ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पूतना लोकबालघ्नी राक्षसीरुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गति किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना पूतना श्रील प्रभुपाद जी लिखे द प्रोफेशनल राक्षसी लोक बालघ्नी लोगों के बच्चों की हत्या करने वाली राक्षसी राक्षसी राक्षस की स्त्री रुधिराशना रक्त का भोजन करने वाली जिघांसया मारने की इच्छा से भी अपी भी हरये हरि को श्री कृष्ण को स्तनम दत्वा स्तन देकर आप प्राप्त की सदगति भक्तों की गति किम पुनः फिर क्या कहना है श्रद्धया पूर्ण विश्वास के साथ भक्त्या भक्ति से प्रेम से अनुराग से कृष्णाय श्री कृष्ण के लिए परमात्मा ने जो परमात्मा है यच्छन् देकर प्रियतम अपना या कृष्ण का प्रियतम पदार्थ किं न और फिर क्या कहना रखता है जो अनुरागी भक्त हैं वे तन मातर श्री कृष्ण की माताओं के श्रीकृष्ण की माताएं जथा जयसी तो श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर ऋषियों के समाज में भगवान के इस पूतना उद्धार लीला पर अपनी सम्मति दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान ने पूतना को भी सदगति दिया। आगे सदगति का वर्णन किया गया है जननी गति मां यशोदा का स्थान दिया अपने धाम में और अपनी धाय बना लिया भगवान ने। ये सदगति सदगति का अर्थ है सताम गति सदगति जो भक्तों की गति होती है इनका जो गंतव्य है जो प्राप्त करते हैं वह गति पुत्रा ने प्राप्त किया है। सर्वथा अयोग्य को भगवान ने योग्यतम वस्तु दिया जो नहीं देना चाहिए वास्तव में, कहने का आशय ये है। सब तरह से पूतना हीन थी, नीच थी, लेकिन ऐसी नीच पूतना को भगवान ने सर्वोत्कृष्ट वस्तु दिया, अपना धाम दिया और अपने मां का पद दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी अब उन भक्तों की और भगवान के माताओं की याद कर रहे हैं, उनको श्री कृष्ण क्या देंगे। ब्रह्मा जी ने तो भगवान से कह दिया कि जब आपने पूतना को भी मातृगति दिया तो इन भक्तों को, इन प्रेमी सखाओं को, गौओं को आप क्या देंगे, आप इनके सदा ऋणी रहेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। हम नहीं देखते हैं कि आपके पास कुछ भी है जो दे करके आप ऋण हो जाएंगे। तो पूतना के तीन विशेषण इसमें दिए गए हैं। पूतना एक तो राक्षसी थी, जन्म बहुत बुरे वंश में हुआ था, बुरे खानदान में, जिसका वंश बहुत बुरा है, उसके बाप दादे या पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे के लोग केवल पाप ही किए हैं, तो पाप करने वाले की कोई अच्छी गति नहीं होती है, उसे स्वर्ग नहीं मिलता, उसे अच्छा जन्म नहीं मिलता है, बल्कि घोर नरक की प्राप्ति होती है, दुर्दशा होती है। यदि अच्छे कुल में जन्म हो जाता है कोई किसी का और खराब व्यक्ति भी रहता है, तो कुल अच्छा होने से उसको अच्छी गति प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम में कथा है कि जब भगवान बाणासुर के साथ युद्ध कर रहे थे तो बाणासुर की भुजाओं को, 1000 भुजाओं को उन्होंने काट दिया, केवल 4 छोड़ दिया, मस्तक नहीं काटा। इस पर श्री भगवान कहते हैं कि प्रहलादाय बरो दत्त मन बद्ध तवान्वय। महाशु से कहते हैं कि मैंने प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि आपके वंश में जन्म लेने वाले का वध नहीं करूंगा। प्रहलाद महाराज इतने प्रिय भक्त हैं कि उनके वंश में कोई भी जन्म लेगा उसको मैं नहीं मारूंगा, ये भगवान ने वर दिया था। तो अच्छा वंश में जन्म लेने पर अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन पूतना का जन्म ही बहुत भयानक राक्षस परिवार में हुआ था। ऐसे इसका वर्तमान पीढ़ी जो है, इसकी वर्तमान पीढ़ी में भी अघासुर और बकासुर ये सहोदर भाई और बहन थे, सहोदर भाई अघासुर और बकासुर। तो इससे अनुमान किया जा सकता है कि बाप भी ऐसा ही कोई भयंकर रहा होगा, दादा जी सब ऐसे ही हुए हैं। तो जाति से भी गई बीती थी, जन्म भी खराब वंश में हुआ। अच्छा खराब व्यक्ति भी हो लेकिन अच्छा काम करने लगता है तो अच्छा माना जाता है। बुरे वंश में जन्म लिया लेकिन काम करने लगा अच्छा, पर पूतना का काम भी बिगड़ा हुआ था, उसका आचरण बिल्कुल रद्द था। क्या आचरण था? लोक बालघ्नी, लोक का अर्थ है लोग, लोगों के बच्चों को मारती रहती थी, वध करती रहती थी, यही काम था। इस संसार में तो हम लोग आजकल बहुत गंदे लोग देख रहे हैं कि वो लोग तो अपने बच्चों को मारते रहते हैं गर्भ में चाहे कैसे। ये पूतना से भी गई बीती स्त्रियां हैं और ये कार्य कराने वाले लोग भी अघासुर बकासुर ही हैं। तो वे लोक बालग्नि थे, स्व बालग्नि नहीं, लोगों के बच्चों की हत्या किया करते थे। संसार में हम लोग देखते हैं कुछ लोग पशु वध करते हैं, बकरा आदि का वध करते हैं, लेकिन प्रकट गांव गांव नगर नगर सब जगह घूम घूम करके और बच्चों की हत्या करे ऐसी कोई स्त्री दिखाई नहीं देती। पर पूतना का काम यही था, इसे इस कार्य में बहुत रुचि थी। और ऊपर से कंस का परमिशन मिला हुआ था कि काम करो, सरकारी पावर मिला हुआ था, काम करते थे। लोक बालग्नि बच्चों की हत्या करते थे, बच्चों को देख करके सहज दया उत्पन्न हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन यह ऐसे क्रूर हृदय की थी, बच्चों को मारना यही इसका कार्य था। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रोफेशन कहते हैं इसको, कि इसका यही प्रोफेशन था मारना, दया का नामो निशान है। कभी कभी सात्विक भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले तो मनुष्य के मन में सात्विकता आ जाती है, शुभ विचार आते हैं भोजन के कारण, लेकिन भोजन भी इसका बिल्कुल गायब था। भोजन क्या करते थे, भोजन में कभी अन्न दूध रोटी आदि तो सोचा ही नहीं, ये मांस खाते थे और मांस में रुधिर ज्यादा रहता था, रक्त ज्यादा रहता था, इसलिए भोजन में प्रधान चीज का नाम सुखदेव गोस्वामी गिन रहे हैं रुधिराशना, रुधिर का अर्थ है रक्त। हमेशा खून पीती रहती थी। ये कहा गया है कि जैसा भोजन होता है वैसा ही मनुष्य का मन बनता है, तो भोजन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, भोजन के साथ और भजन के साथ कोई संबंध नहीं, जो मन करे वो खाओ। परंतु भगवान जो गीता में भोजन का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें सदा जोर दे रहे हैं सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, और वह भी भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, तो नैवेद्य कह। एक श्लोक में कहा गया है कि अग्निष्टोम सहस्रेषु वाजते शतैरपि तत्फलम प्राप्यते नूनम विष्णु नैवेद्य भक्षणात्। हजारों हजारों अग्निष्टोम करने से, वाजपेय जग अश्वमेध जग आदि करने से जो प्राप्त होता है, व्यक्ति पवित्र होता है उस भोजन को करके, वह सारा यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल, अग्निष्टोम का फल केवल भगवान विष्णु के प्रसाद भक्षण से मिल जाता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रसाद को खाता है वह प्रत्येक इटिंग में, प्रत्येक टाइम में हजारों यज्ञ करता है। गीता में भगवान कहते भी हैं यज्ञ शिष्टा सिंह संतो मुचंते सर्व किल विषय। पूतना कितनी नीच व्यक्ति थी जो हमेशा रुधिर खाते पीते थे, रक्त पीते थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं रुधिरासना, रुधिर का आसन करते, आसन मैंने भोजन। तो जन्म भी खराब था, कर्म भी खराब था और भोजन भी खराब था, तीनों खराब। पर इसने भगवान को एक चीज दिया, विद्या जिघांसया स्तन दिया, पर श्रीकृष्ण के वध के लिए, ये मर जाए इसके लिए अपना स्तन दिया। फिर भी अपि जिघांसयापि स्तनम दत्वा आपको सदगति। श्री कृष्ण की जान मारने के लिए इसने अपना स्तन दिया जहर लगाकर विष लगाकर, पर ऐसा करने पर भी सदगति पाई, भगवान के धाम में मातृपद प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण के इस लीला पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो फिर किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णा या परमात्मा ने जक्षण प्रियतम की मूल रक्ता स्तन मात्र हो जाते किम नु कैमुक्त न्याय कह रहे हैं। जब इस प्रकार से बुरी पूतना बुरी नियत से श्रीकृष्ण की जान मारने के लिए उसने स्तन दिया और दे करके जब सदगति प्राप्त कर गई, तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, कोई व्यक्ति श्रद्धा से विश्वास के साथ कि श्री भगवान लेते हैं और ये हमारा धर्म है देना उनको, इस विश्वास के साथ यदि कोई कुछ वस्तु देता है तो वह सदगति प्राप्त करेगा, इसमें क्या संदेह है, क्या कहना है। कई कई दृष्टांत दे रहे हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। श्रद्धा कहते हैं केवल सामान्य विश्वास को, और भक्ति का अर्थ है भक्ति प्रेम से, विश्वास से देना और प्रेम से देना, प्रेम थोड़ा और आगे है भक्ति। तो और प्रियतमम सबसे प्रिय वस्तु जिसको है, जिसे किसी को कोई बहुत प्रिय वस्तु है, उस प्रिय वस्तु को भगवान को दे रहा है, या भगवान को जो प्रिय है उसको दे रहा है प्रिय वस्तु। रखता है और भक्ति से भी बढ़ करके आगे यदि कोई अनुरागी है, श्री कृष्ण में आसक्त है और आसक्त होकर के रक्त होकर के यदि वो कुछ दे रहा है, तो उसके सदगति में क्या संदेह है। और तन मातरो जथा, जैसे भगवान की माताओं ने दिया, इन माताओं के सदगति आदि की बात नहीं कह रहे हैं। तन मातरह जथा, मातरह बहुवचन में है। जिस समय ब्रह्मा जी ने बछड़ों का और बच्चों का हरण किया था, तो भगवान उस समय उतने ही बच्चे और बछड़े बन गए थे। बछड़े बनकर के गौओं का दूध पी रहे थे, साल भर पिए, प्रतिदिन शाम को आते थे वन से, बछड़ों को लेकर के स्वयं ही अपने रूप से ही ग्वाल गोप सखा भी वही बने हुए थे और बछड़े भी बने हुए थे। तो बछड़ा बनकर के गौओं का दूध पिए और बच्चे बनकर के माताओं का दूध पिए, इसलिए मातर। जैसे भगवान की माताएं तन मात्र है, कृष्ण से मात्र है, श्रीकृष्ण को देती हैं, दूध पिलाती हैं स्नेह के साथ। तो इस प्रकार से कोई भगवान को दे, प्रियतम वस्तु दे, उस देने वाले के सदगति में क्या संदेह हो सकता है, कुछ भी संदेह नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्ति। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर बहुत से कैमुक्त न्याय कहे हैं। वो कहते हैं करण, संप्रदान, कर्म और कर्ता, चार चीज है। करण का अर्थ है कि देने की भावना किस मूड में दे रहा है। जब जिघांसयापि दत्वा, जिघांसा की इच्छा से, बध की इच्छा से पूतना ने अपना स्तन दिया, तो फिर तो किमुत चलेगा कि फिर किमुत औदासीन्येन। यदि कोई व्यक्ति उदासीनतापूर्वक न उसको प्रेम है न द्वेष है कृष्ण से, उसको उदासीन कहते हैं, कुछ दे दिया भगवान को, तो उसके सदगति में क्या संदेह हो सकता है। जब जिघांसा की इच्छा से उतना ने दिया और फिर भी सदगति प्राप्त की, तो उदासीनता पूर्वक कोई दे दे तो ये तो एक डिग्री आगे की बात है ना, जिघांसा तो नहीं है। भगवान को कोई दूध दिया या पानी दिया तो मारने की इच्छा तो नहीं है, हो सकता है भगवान को तृप्त करने की भी इच्छा न हो, ऐसे ही दे दिया मसूदा से, सब लोग देते हैं इसलिए देते। उसके बाद और है फिर श्रद्धा से, श्रद्धा से कि अच्छा काम है भगवान को देना चाहिए, पुनीत कार्य है, श्रद्धा और भगवान स्वीकार करते हैं। और इससे भी फिर किमुत ताल और किमुत तमा, फिर कोई भक्ति से दे, स्नेह से दे, भगवान को तृप्त करने की भावना से, खिलाने की, उनको पोषने की, सुखी करने की भावना से दे, इसको भक्ति कहते हैं। तो कोई श्रद्धा से दे और भक्ति से दे तो उसको भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, इसको करण कहते हैं। जिघांसया पिदत्वा, जिघांसा के लिए दे करके पुतना सदगति प्राप्त की, तो विश्वास के साथ भक्ति के साथ अगर कोई दे तो इसमें क्या संदेह। कर्म का वर्णन कर रहे हैं, क्या दे, जब वो विष दे करके भी सदगति प्राप्त की तो फिर कोई प्रिय वस्तु, प्रियतर वस्तु और प्रियतम वस्तु दे करके केवल हम सदगति प्राप्त करेंगे। भगवान को जो प्रिय है, जो चीज प्रिय है, जैसे मरपंख पहनते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, उनके सब चीज प्रिय है, बांसुरी प्रिय है, तो कुछ भक्त यदि उनको कुछ दें और उसमें भी प्रिय वस्तु, प्रियतर वस्तु और प्रियतम वस्तु, या अपने लिए जो सबसे प्रिय वस्तु लगती है वो देते हैं, तो इसमें क्या संदेह है कि उनको सदगति मिलेगी, वही धाम, वही स्थान और वही पद जो पुतना को मिला क्यों नहीं मिलेगा। जब विष दे करके भी उसने प्राप्त किया तो फिर भक्तों को क्यों नहीं मिलेगा। तो ये तमाम वस्तु सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और कर्ता, भक्ति करने वाला कर्ता माना जाएगा, तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, जब राक्षसी भी सदगति प्राप्त कर सकती है, लोक बालग्नि भी, तो फिर किम उतर मनुष्या, जो राक्षसी श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। ये कर्ता किम उतर, क्यों नहीं मनुष्य प्राप्त कर सकती, भले ही नहीं जानते हैं भगवान को, नहीं जानते हैं, लेकिन कोई राक्षस जैसा स्वभाव तो है नहीं उनका, किसी तरह से श्री कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए, यह मुख्य बात है। तो वस्तु शक्ति से जीव का कल्याण हो जाता है, भगवान एक अद्भुत वस्तु है और उनमें अनंत अद्भुत शक्तियां हैं, पवित्र करने की, प्रेम भर देने की, ये कुछ भी करने की, कल्याण करने की सहज शक्ति है, संपर्क में आना चाहिए। और संपर्क जेने के न प्रकार, जैसे तैसे, चाहे मन का संपर्क या वाणी का संपर्क या अन्य इंद्रियों का संपर्क या उनके धाम का संपर्क, नाम का संपर्क, उनके भक्तों का संपर्क, किसी भी तरह से संपर्क में आना चाहिए, उसका हित होगा ही। तो कर्ता राक्षसी भी जब भगवान को विष दे करके और सदगति प्राप्त कर ली, तो अस्तम क्या दिया था, अस्तम नहीं दी थी, अस्तम विष दे रही थी, पर बीच लगाई थी स्तन पर, इसलिए स्तन भी दिया। तो भगवान ने यही देख रहे थे कि इसने अपना स्तन दिया पीने के लिए। स्तनम दत्वा आप सद्गति। तो जब राक्षसी श्री कृष्ण को पा सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं पाएंगे? और मनुष्यों में भी जो सदाचारी हैं, जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म आदि का पालन करते हैं, और उससे भी बढ़कर के जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, और रक्त हैं श्री कृष्ण में, अनुरक्त हैं, असक्त हैं, वे यदि कुछ भगवान को दें तो भगवान क्यों नहीं उस स्वीकार, उस उपहार को स्वीकार करेंगे और उस भक्त का एहसान मानेंगे? कर्ता और संप्रदान किसको दिया? हरये, हरि को। किसका संप्रदान में अर्थ करते हैं चक्रवर्ती पाजी, भगवान के किसी भी अवतार या प्रकाश मात्र को कुछ दिया तो क्या संदेह है? और फिर स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण को, परमात्मा को, जो परम प्रिय हैं, सभी जीवों के हृदय में ज्ञान आदि दे रहे हैं, परम प्रिय हैं, ऐसे प्रभु को कोई दे तो क्या संदेह हो सकता है उसके सद्गति में? कोई संदेह नहीं, इसमें कुछ कहना ही नहीं। अपने आप किन वक्तव्यम का अर्थ होता है इसमें, और क्या कहा जाए? यही उदाहरण है, जब पूतना को उन्होंने सद्गति दिया तो और किसको नहीं देंगे? यदि कोई श्री कृष्ण के संपर्क में आता है तो पूतना ने कुछ भी भगवान को नहीं दिया, वास्तव में कुछ भी नहीं किया। वो जैसे भी जिस सौभाग्य से हो कृष्ण के संपर्क में आ गई, गोकुल में आई और भगवान के भक्त का ड्रेस पहनी और श्री कृष्ण के परम शुद्ध सच्चिदानंद श्री विग्रह का स्पर्श मिला, स्पर्श ही नहीं मिला बल्कि भगवान ने आक्रमित किया उसके देह को, उसको दबाया तो चढ़े। पूतना ने लाख कोशिश किया हटा दे हटा दे, लेकिन श्री कृष्ण हटे नहीं। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि बहुत जोर लगाने पर भी असुर बल परास्त हो गया। यदि भगवान जिसको पकड़ रहे हैं वो छुड़ाना चाहे छुड़ाएगा कैसे? छुड़ा नहीं सकी, छटपटा रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, जोर लगाई, बहुत बड़ा बल था पूतना में, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं सके। इस तरह से श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा था। भगवान जिसको पकड़े तो किसकी शक्ति है वो छुड़ा लेगा अपने को? कभी छुड़ा नहीं सकता। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, बाली को जब भगवान ने बाण से मारा, सुग्रीव का भाई बाली, बाद में श्री भगवान कहने लगे कि मैं तुमको आशीर्वाद दे सकता हूं, तुम जीवित रहो, मरोगे नहीं। तो बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि लोग जत्न करते हैं लेकिन आप तो आते नहीं हैं मृत्यु के समय, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने रहें और मैं शरीर छोड़ूं। इसमें आग्रह है कि भगवान हमें पकड़े हैं, हम भगवान हमारे पास रहे। और पूतना के उदाहरण में ठीक विपरीत दशा है, वो छुड़ाना चाहती थी, हटाना चाहती थी, बहुत जोर लगाई, मुंचा मुंचा, छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे, छूट नहीं पाई। पूरा असुर बल लगा दी छूटने के। ऐसे ही सभी जीव वास्तव में भगवान से विमुख हैं, परंतु भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, परमात्मा रूप से हृदय में ही अड़े हुए रहते हैं। जिस योनि में जाए, जिस शरीर में, जिस स्थिति में, पर वहां रहते ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वे रहते हैं। तो वहां से लौकिक हित आदि करते रहते हैं, स्मृति देते हैं, ज्ञान विस्मृति सब देते रहते हैं, पर छोड़ते नहीं हैं। जीव इसी व सहज संघात, यह पकड़ दूसरी है। भगवान हृदय में है, अस्प्रभ हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान है हृदय में लेकिन सब लोग दुखी हैं। पर भगवान के रूप से, धाम से, नाम से, लीला से, प्रसाद आदि से संपर्क हो जाए तो जीव की शुद्धि हो जाती है। भगवान ऐसी वस्तु है कि उनसे कल्याण होगा। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, किसी तरह कनेक्शन में आना चाहिए। जैसे बिजली का तार है, किसी तरह टच होना चाहिए, थोड़ा भी, चाहे रस्सी समझ करके कोई टच करे या साधारण तार समझ करके, लेकिन बिजली की वस्तु शक्ति है, वो करंट मारेगा। ऐसे ही श्रीकृष्ण की वस्तु शक्ति है, भाव कुभाव नहीं देखते हैं। किसी तरह संपर्क में आया, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है और उसका परम कल्याण होता है। उसी को अगले श्लोक में कह रहे हैं, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदित अंगम जस्या, अंगम जस्या समाक्रम में भगवान अपिवत अस्तम। भगवान के चरण कमल अत्यंत दुर्लभ है, जुगल चरण कमल उन्होंने स्वयं ही पुतना को दिया है। कोई प्रार्थना नहीं कि हमें अपना चरण कमल दीजिए, आपके चरण कमल में प्रणाम करती हूं, कुछ नहीं। वो तो द्रोह से मारने गई थी, पर भगवान ने अपना चरण कमल स्वयं दिया। मिने पत्रिका में पद है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बीरद हेतु पुनीत परिहरी पांव रमी सुप्रीत। कौन ऐसा प्रभु है जो ऐसी लीला कर सकता है। अपने यश को ही श्री कृष्ण देखते हैं, अपने स्वभाव को ही, अपने स्वभाव को देखते हुए श्री कृष्ण ने पांवरों से प्रेम किए, पतितों से प्रेम किए। पूतना श्री कृष्ण का वध करने के लिए अपने स्तन में विष लगा करके गए, कुछ काल कूट लगाए, पर मातु की गति दयिता ही कृपालु जादव राय, पर कृपालु जादवेंद्र श्री कृष्ण उसको माता की गति दिए। इस तरह से भगवान के करुणा की लीला है, स्वयं अपना चरण कमल दिए। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, एक अभक्त जो भजन करते हैं, और जो भजन नहीं करते उनको अभक्त कहते हैं। भजन नहीं करते उनको अभक्त कहते हैं, और जो भजन करते हैं उनको भक्त कहते हैं। तो एक और भी व्यक्ति होते हैं जो भगवान के द्वेषी होते हैं, भक्त भक्त दोनों से अलग होते हैं, भजन करना है या नहीं भजन करना है, भक्त भी नहीं है अभक्त भी नहीं है, द्वेषी। भगवान से हम सब द्वेष करने वाले हैं, लेकिन अगर द्वेषी भी भगवान के संपर्क में आ जाए, जैसे पूतना आई थी, तो उसका परम कल्याण होता ही। परंतु इतनी बात है कि भगवान अपने द्वेषियों का वध करते हैं, विविध अवतार लेकर के द्वेषियों का वध कर देते हैं, और वध करके उनको मुक्ति दे देते हैं, पर अपना चरण कमल नहीं देते हैं। जो द्वेषी होते हैं उनको अपना चरण कमल नहीं देते हैं। पर पूतना के विषय में स्पेशल दया है कि भगवान ने अपना चरण दिया। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, भगवान के दोनों जुगल चरण कमल भक्तों के हृदय की पूंजी है, धाम है, वही निरंतर सेवन करते हैं। सरंगाराम पदाम्बुजन, मुनिजन, भक्तजन भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हैं और वही मन से ही विविध प्रकार से, मानसिक फूल से और सुगंधित द्रव्यों से, केसर आदि से भगवान के चरण की सेवा करते हैं, पाद संवहन भी करते हैं। तो इसको कहते हैं हृदयस्थाभ्याम, भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल हमेशा उगे रहते हैं। पर यह होता है केवल भावना द्वारा, उनको वक्षस्थल पर भगवान का चरण कमल सुलभ नहीं है। हृदयस्थाभ्याम, हृदयस्थाभ्याम का अर्थ है हृदय के भीतर स्थित रहते हैं चरण कमल, न कि पुतना जैसा बाहर। ये सौभाग्य है भक्तों का कि वे भगवान के चरण का चिंतन करते हैं पर हृदय के भीतर मन में चिंतन करते रहते हैं, विविध प्रकार से चिंतन करते हैं, लीलाओं का चिंतन करते हैं कि चरण इस तरह से घूम रहे हैं वृंदावन में चाहे यहां वहां। हृदय में, हृदय कमल पर भगवान के जुगल चरण कमल को स्थापित करके चिंतन करते हैं। उन भक्तों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो पूतना को मिला है, वे भी भगवान के कर कमल का हाथ से स्पर्श नहीं कर पाते हैं और अपने छाती पर रख नहीं पाते हैं, मन में चिंतन करते हैं। बंद्याभ्याम लोक बंदित, सारा संसार जिनकी वंदना करता है, जो लोक बंदित हैं, जैसे भगवान सृष्टि करता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी विश्व की सृष्टि करते हैं और भगवान शिव नियमन करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। भगवान के सबसे बड़े देवताओं में भक्त हैं जो बंदित हैं, जिनकी जिनके चरण कमल की वंदना और लोग करते रहते हैं सारे देवता, तो ऐसे भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी, ये लोग भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। बंद्याभ्याम, इनके द्वारा बंदित चरण, और केवल वंदना करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी उनको चरण देखने को मिलता है, मिला है, लेकिन केवल वंदना कर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके देह पर भगवान अपना चरण रखें या मस्तक पर रखें, ऐसे कभी सौभाग्य नहीं मिलता है। और वैसे जनरली तो मन में वंदना करते हैं, चिंतन में वंदना करते हैं, देखते हैं कि हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान के चरण हैं। तो पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, बंद्याभ्याम लोक बंदित ही, अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान में पिबत स्तनम, ऐसे चरणों से पदभ्याम जुगल चरणों से जस्या अंगम समाक्रम्य, जिस पूतना के अंग को सम आक्रम्य, सम और आ दोनों शब्द हैं, आक्रम्य पूरा पूरा दबा करके, सम्यक दबा करके, अपने दोनों चरणों को टिका करके, लगा करके, और जस्य अस्तनम अपिबत, भगवान ने स्तन पिया। अंगम जस्य समाक्रम्य भगवान अपिबत अस्तनम, भगवान पिए स्तन को, टिके रहे बहुत देर तक, मुख से पकड़े थे स्तन और हाथ से भी, और अपना सर्वांग लेटाए थे पुतना के देह पर, वक्षस्थल पर, और दबा करके सम्यक रूप से भगवान स्तनम अपिबत, भगवान स्तन पिए। जात धान्यपि सास्वर्गम अवाप जननी गति, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावन मात्र। तो वह जातु धानी अपि राक्षसी भी स्वर्गम अवाप, स्वर्ग पाई, स्वर्ग का अर्थ है भगवान के रहने का स्थान, इनका धाम गोलोक। तो भगवान श्री कृष्ण से द्वारका में आकर के देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि आप स्वर्गवास कीजिए। तो स्वर्ग सब समय इस प्राकृत स्वर्ग को ही नहीं कहते हैं, भगवान के धाम को स्वर्ग कहा गया। स्वर्गम जननी गतिम, जहां जननी रहती है, मां यशोदा रहती है, वो स्थान स्वर्ग। उसको इसलिए कहा जाता है कि परम आनंदमय सुखमय स्थान है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। पर स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन। इस जननी गति, जननी जहां रहती है, टहलती है, वास करती है, यह जननी गति। और गति का अर्थ पद भी है, जैसे श्री कृष्ण की सेवा करती है, दूध पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, यह जननी गति। भगवान के पार्षदों को ही यह सब सुलभ है। पार्षद से तात्पर्य गोलोक के पार्षद, परिषद से पार्षद शब्द बनता है, जो चारों तरफ रहते हैं, गोपियां या गोप उनको पार्षद कहते हैं। वैकुंठ के पार्षद भिन्न होते हैं। तो जननी गति प्राप्त किया पूतना ने। जात धानी अपि राक्षसी भी, जात धान अपि सा वह पूतना जिसका पहले वर्णन किया गया, क्रूर हृदय स्वर्गम जननी गति आप। तो कृष्ण भुक्त स्तनक छीरा किनो गावन मातर, फिर श्री कृष्ण जिनके स्तन को पिए, जिन गायों के और गोपियों के, और उनके विषय में क्या कहना है, क्या कहना है। सुखदेव गोस्वामी की अपनी भाषा है। अब इनके विषय में ये कहना कि इनको भी वही गति मिलेगा, तो मिली हुई है, अब मिलेगी, ये क्या कहना है। जो यशोदा को नहीं रखा गया, चक्रवर्ती पाठ जी कहते हैं कि यशोदा को सुखदेव गोस्वामी दूर से ही प्रणतिभूता करके, प्रणाम करके, और उनका नाम नहीं लेते। माता को क्या नहीं मिला हुआ है, कृष्ण मिले हैं, अपने अंक के गोदी के श्रृंगार हैं, उन्हीं को लेकर के चुनती रहती है, सोती है, खिलाती है, पिलाती है, और कोई उत्पटांग अचर होने पर थप्पड़ भी तानती है, बंधन में भी डालती है। इस यशोदा के विषय में क्या कोई कहेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यशोदा जी के बारे में कुछ नहीं है। जो गौएं थी, जो भगवान की माताएं और गोपियां, एक साल तक जिनके कृष्ण पुत्र रहे, उनके विषय में कह रहे हैं। कृष्ण भुक्त स्तनक छीरा, जिनके स्तन छीर को, स्तन के दूध को कृष्ण भोगे पिए, उनके सौभाग्य के विषय में क्या कहना है। आगे मिलेगा या मिली है, ये बात कुछ नहीं कह रहे हैं। राक्षसी पूतना का भी स्तन पिए और उसको जननी गति दिए, तो फिर गायों के लिए और गोपियों के लिए, जिनका स्तन में पिए हैं, दूध पिए हैं खूब आनंद से, उनके विषय में क्या कहना। सर, इसको समीक्षा कहते हैं, समीक्षा और उत्प्रेक्षा। उत का अर्थ होता है उत्कृष्ट रूप से, और प्र का अर्थ है प्रकर्ष, और इच्छा का अर्थ देखना, किसी बात पर गहराई से विचार करना, इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। ये सब उत्प्रेक्षा हो रही है सुखदेव गोस्वामी, लीला कथा कह दी, अब कह करके फिर उसका चरवण कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। तो पूतना को यह गति भगवान ने दिया, तो और के विषय में क्या कहना है। पयांश जासा मतिवत पुत्र स्नेह स्मृतान्यलम, भगवान देव की पुत्र कैवल्याद्य अखिल प्रद। यद्यपि भगवान देवकी नंदन, देवकी से तात्पर्य यशोदा, यशोदा जी का नाम भी देवकी था, देवकी है, तो देवकी पुत्र यशोदा नंदन भगवान कैवल्य आदि समस्त वस्तुओं के दाता है, सबसे बड़े दाता हैं, सब कुछ देते रहते हैं, कैवल्य जिसमें सबसे बड़ा है। कैवल्य देते हैं, स्वर्ग देते हैं, पृथ्वी का सुख देते हैं। स्वर्ग में जो भी सुख संपत्ति है सब दे सकते हैं, देते रहते हैं, और कैवल्य देते हैं, वैकुंठ का सुख देते हैं, और पृथ्वी का साम्राज्य और यहां जो भी सुख है और भोग है, यहां तो कुछ है नहीं, सब कचरा है, लेकिन जो चाहता है तो भगवान दे देते हैं। इससे बहुत उत्कृष्ट सुख स्वर्ग में है, और असातल में, पाताल में है, सुतल लोक आदि में। तो जो भक्त कामना करे, श्रीकृष्ण सब देते हैं, इतने बड़े दाता हैं, पर ऐसे भगवान भी जिन गौओं के और जिन माताओं के दूध को पिए और अलम अपिबत पूरा छक करके पिए, जितनी गौएं थी उतने बछड़े बने, और जितनी गोपियां थी मातृभाव की सबके पुत्र बने, और खूब पिए। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि आप खूब दूध पिए इस अवतार में, खूब दूध पिए, यानी एक एक होकर के नहीं, जो सदा का दूध थे पीते ही थे, और वैसे डायरेक्ट भी कृष्ण रूप से कई माताओं का दूध पिए, रोहिणी जी का दूध पिए और अनेक माताओं का, गौओं को भी डायरेक्ट उनके थन में मुख लगा करके पीते थे, और वैसे उनका बछड़ा बन करके और गोपियों का बच्चा बन करके खूब पिए। अलम, इसमें भी शब्द है अलम, अलम अपिबत, बहुत पिए। कैसा दूध? पुत्र स्नेह स्मितानी, पुत्र के स्नेह से, पुत्र के स्नेह बस जो दूध अपने आप झरता था, स्मित होता था, चूता रहता था, ऐसे दूध को श्री कृष्ण पिए। इसका अर्थ है परम स्नेह से गोपियों ने दूध पिलाया भगवान को और गौओं ने। पुत्र स्नेह स्मितानी पयांसी जासम अपिबत, सर्वस्व के दाता महादानी भी इतने भूखे हो गए, सबको सब कुछ देने वाले, कैवल्य आदि देने वाले भगवान इनके दूध को खूब पिए। एक तरफ ऐसा कारण सबसे बड़ा दाता और दूध पिए, तो सबसे दुर्लभ है ना दूध ब्रज का, गौओं का दूध और माताओं का दूध, इसको खूब पिए। ऑलम ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं वहां पर अपनी स्तुति में चौदहवें अध्याय में, और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, अलम अपिबत, बहुत अधिक पिए दूध, प्रेम का दूध, कभी अपच नहीं हुआ। जब बच्चा थे बिल्कुल, तो मां यशोदा इनको दूध पीने के लिए देती थी, तो उस समय श्री कृष्ण नाटक करते थे, दूध नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, माता यशोदा धारोष में दूध पिलाना चाहते थे, कांचो दूध पियावत पछी पछी देत न माखन रोट, तू ये पचपच दूध पिला रही हो, कभी माखन और रोटी नहीं देती तो रोटी क्यों दे माता यशोदा, ये सब गऊ के उपकरण, दूध दही घी ये सब दे, दूध पिलाती थी, हाथ में कटोरा लेकर के पियो पियो पियो, तो जब कभी कम पीते थे या नहीं पीते थे, तो माता यशोदा कहती थी तुम पियोगे तो तुम्हारा केस भी बलराम जैसा बढ़ जाएगा। बलराम का केस देखते हो, लंबा लंबा केस है, छोटी है, छोटी उन्हें पूरा पूरा केस सीखा नहीं, पूरा केस बढ़ जाएगा, तो दूध पियोगे तो बलराम बहुत दूध पीता है। माता यशोदा इस सबसे ईर्ष्या पैदा करती थी, बलराम बहुत दूध पिया है, कितना तगड़ा है, तुम ऐसे कमजोर हो, तो बलराम जैसा स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। तो श्रीकृष्ण भी कहते थे कभी कभी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये हमारा केस कब बढ़ेगा, बलराम का केस बहुत बड़ा हुआ है, एक तो लंबी और मोटी शिखा बांधने पर पूरा शिखा हो रही। तो माता यशोदा कहती तुम दूध पियोगे तो ये बलराम जैसी शिखा हो जाएगी, छोटी पड़ेगी, शिखा नहीं मतलब पूरा केस कलाप, पीने के लिए देते पियो पियो बढ़ेगा। तो श्री कृष्ण ऐसे पीते थे और पी करके फिर केस छूते थे, कहते तो बढ़ा नहीं कुछ भी नहीं, जितना लंबा था उतना ही हुआ, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरा केस कब बढ़ेगा, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। उसी में कहते हैं तुम कांचो दूध पियावत पची पची दे तो माखन रोटी, तुम कभी माखन रोटी नहीं दे रही हो और कच्चा दूध पच पच पिला रही हो। इस तरह से बोलते पयांश जासाम अपिवत पुत्र स्नेह स्नेतानी, तो पुत्र स्नेह से झरते हुए दूध, कितना स्नेह था उन गौओं का और गोपियों का, माताओं का स्नेह। पुत्र श्री कृष्ण इस हमारे दूध को पिए इसके लिए दूध स्नेतानी, स्नेत का अर्थ है वो बिल्कुल चुचक के छोर पर आ जाता था दूध, केवल मुख लगाए और बस जाने लगता था मुख। तो पुत्र स्नेह स्नेतानी का अलम अपी बहुत पिए। कैवल्य आदि के दाता हैं भगवान, सर्वस्व देते हैं, बड़ा बड़ा धन देते हैं लेकिन वे प्रेम से दूध पिए। तासाम अभिवतन कृष्ण कुर्व तीनम सुतक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसार और ज्ञान संभव। कभी कभी शंका होती है तो ये सब गोपियां या इसी तरह माया में रहेंगी, ये हमारा पुत्र देह है गेह है पुत्र है पति है, क्या इसी भावना में रहें। मान लीजिए कोई समाज में बैठा हुआ व्यक्ति शंका करे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासाम अभिवतन कृष्ण कुर्व तीनाम सुतक्षणम, तासाम कृष्ण कृष्ण में हमेशा यही बुद्धि रहती थी, अविरतम सदा यही बुद्धि रहती थी कृष्ण हमारा पुत्र है। सुतक्षणम इक्षण का दृष्टि, सुत दृष्टि पुत्र दृष्टि कर रखती थी और कभी इसका विराम नहीं है, अविरतम यह नित्य लीला है। वास्तव में अनादि काल से अनंत काल तक गोपियों की गायों की यही दृष्टि है कि मेरा पुत्र है, और उन माताओं का कभी दूध समाप्त होने वाला नहीं है, उनका भाव कभी जाने वाला नहीं है, और कृष्ण भी उनके पुत्र ही रहते हैं, यह नित्य लीला है। तो उसी को सुखदेव गोस्वामी संकेत में कह रहे हैं कि यहां जो देह गेह पति पुत्र का संबंध है यह संसार नहीं है। संसार कहा जाता है देह घर पति पुत्र आदि की ममता आसक्ति, इसी को संसार कहते हैं। एक बार मैं भागवत पीठ में गया था, यहां पर है तो करुणा सिंधु महाराज जी थे, बहुत पहले की बात है, तो वो कुछ सत्संग कर रहे थे, भक्त लोग बैठे थे, तो हमसे कहते हैं संसार किया कि नहीं। मैं तो चकित हो गया कि संसार किया कि नहीं। मैं बिल्कुल नहीं समझा संसार किया कि नहीं, हम ये सोचने लगे संसार कुछ रचार रचना किया है। और मंगल जी थे, उन्होंने कहा कि वो संसार माने नहीं समझते हैं, विवाह किया कि नहीं। तो विवाह करके पत्नी बच्चे और ये सब जो जाल है इसको संसार कहते हैं। संसरति थी संसार जो गच्छति, संसरति का अर्थ है गच्छति, जो चले चलायमान हो परिवर्तनशील हो और अंत विनष्ट हो जाए, इसको संसार कहते हैं। तो इस संसार में देह गेह पति पुत्र ये सब चलती सब प्रतिक्षण चल रहे हैं और अंत में काल के जाल में चले जाते, जिसको संसार कहते। परंतु ब्रजवासियों का जो संसार है वो संसार नहीं है, देह देह है तो देह संबंधी दूध जिसको श्री कृष्ण पी रहे हैं अविरतम निरंतर पीते रहेंगे, अविरतम शब्द है, अविरत पीते रहेंगे तो यह देह बंधन थोड़े हैं। जिस देह से श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, जिस देह के दूध को इतनी आसक्ति से पी रहे हैं, तो वह देह कोई लौकिक संसार तो है नहीं, वो चिन्मय है, दिव्य है, वो देह रहेगा और देह में बनने वाला दूध भी निरंतर रहेगा और श्री कृष्ण प्रेम के भूखे भी निरंतर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक माता का दूध पी लिए होते खत्म हो जाता, हजारों लाखों माताओं का दूध पी रहे हैं और अविरतम निरंतर पीते रहेंगे। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये संकेत कर रहे हैं कि यह भगवान की इंटरनल लीला है, नित्य लीला है गोलोक। तो देह है इतना भाग्यशाली है कि उस देह को श्रीकृष्ण चुमते हैं, पीते हैं, दूध पीते हैं। देह माया कैसे है? गेह खेलती, चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं, जिस घर में श्री कृष्ण खेलते रहते हैं तो गेह बंधनकारी नहीं है। और पति नंद बाबा पति हैं, कृष्ण के पिता ही जिसके पति हैं, ये अर्थ है। भगवान के पिता जिसके पति हैं तो पति का संबंध मायामय नहीं है। और पुत्र श्री कृष्ण एवं, और पुत्र स्वयं श्री कृष्ण है। तो पति के साथ संबंध, पुत्र के साथ संबंध, देह के साथ संबंध और गेह के साथ संबंध, ये न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। ये संसार तो अज्ञान से माना हुआ है, यहां वास्तव में कोई किसी का न पुत्र है, न पति है, न पिता है। ये तो केवल अज्ञान संभव, अज्ञान में मान लिया गया है। इन पहले था संबंध, न बाद में रहेगा। और जब तक है तब तक सब अपगच्छति संसरति, विचार बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, शरीर में जवानी आती है, बुढ़ापा आती है, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन श्रीकृष्ण का जो परिवार है वहां वृंदावन में, यहां वृंदावन में, ब्रज में जो संबंध है, जो शरीर है, घर है, सब नित्य है, चिन्मय है। न पुनः विद्यते राजन संसारो अज्ञान संभव। हे महाराज, यह अज्ञान संभव संसार उनका कुछ ही संभव नहीं होता है, नहीं रहता, न कल्पते। तो यह है भगवान की नित्य लीला, अपने परिकरों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अपनी प्रेमिका गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, गौओं के साथ नित्य विहार चलता रहा। वहां काल नहीं है, वहां कोई कर्म की सत्ता नहीं है, भगवान का खेल है, भगवान का विहार है, खेलते रहो, ये संकेत कर रहे हैं। तो अब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कल मैं बोला था, उसमें मुझे कुछ संदेह है, मैं ऐसा कह दिया था कि नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों के साथ मथुरा से आ गए थे, लेकिन ऐसा यहां के वर्णन से लग रहा है कि नंद बाबा अभी पुतना के दाह संस्कार में भाग नहीं लिए थे, वे दूर थे। पुतना के देह को देखे तो दूर से ही पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था, और इसके बाद उसको काट कूट करके, खंड खंड करके उपनंद महाराज आदि गोप लोग जला दिए, जल रहा था चिता और धुआं जो पलम सुगंधित निकल रहा था, उस समय वे लोग पहुंचे वहां। तो इसका वर्णन यहां पर है, कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौक सह किंगम कुतरे व्यक्ति बदंतो ब्रज में आयु। मथुरा से आते हुए नंद बाबा आदि ने जब उस कट धूमस्य, कट कहते हैं शव को, श्मशान को, जब शव के धुएं को वे लोग सूंघे, उस धुएं के सौरभ्य को, सुगंधित अगुरु के समान सुगंध था, तो आपस में बात करने की निदम क्या आ रहा है, क्या सुगंध इतना बिखेर रहा है, धुआं इतना सुगंधित क्यों एकदम, ये क्या है और कुत्ता है कहां से आ रहा है। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कोई राक्षस जलाया जाएगा तो उसका धुआं आएगा, मक्खी आ रही। तो क्यों एकदम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्या है और कहां से आ रहा है। नीचे से धुआं ऊपर उठ रहा था तो भ्रम हो रहा है कि क्या सुतल लोक में बलि महाराज कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें अग्नि जलाया गया हो, तो वहां से सुगंध आ रही है क्या, ये धुआं इतना उठ रहा है तो ये हो रहा है। और कभी हवा के द्वारा धुआं इधर उधर, क्या कहेंगे उसके, तो मड़गाना तो नहीं कहेंगे, बवड़ियाना कहते हैं भोजपुरी में, झावा के झोंके से कोई हवा इधर उधर ऊपर नीचे होती है तो फिर कह दू, ऊपर से जब हवा आ रही है तो ये नंद बाबा कह रहे हैं कहीं इंद्रदेव के यहां तो यज्ञ नहीं चल रहा है, इंद्रदेव के यहां कोई यज्ञ चल रहा है उसमें अग्नि जलाया जा रहा है। इति बदन तो कहां से आ रहा है और क्या है, किस चीज की धुआं है, और कोई लकड़ी जलाई गई होगी कहीं जंगल में आग लगी होगी तो क्यों निदम, ये अर्थ है कि कहां से धुआं आ रहा है, कहां से आ रहा है वो अलग बात है, किसका धुआं है। इति बदलत ब्रजम आयु, यह बोलते हुए ब्रज में आए चकित होकर के, उतना के सौ से और सौ संबंधी काष्ठ से ये अग्रु का सुगंध निकल रहा था। क्यों नहीं सुगंध निकले, इस विषय में हरिश्री जी एक पद लिखे हैं श्लोक, इसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। अब ये टाइम है ना 9:30 तक तो जा सकता है, ये मुझे श्लोक बहुत प्रिय है। यह साक्षाद भिमर्षित भगवता हस्ते जत्र स्थितम्, यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता, पुतला का जो देह है, यह का अर्थ है जो देह है, श्री भगवान के द्वारा साक्षात अभिमर्शित हुआ। अभिमर्शित का अर्थ है आलिंगन, टच करना। यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता हस्ते में जत्र स्थित, भगवान के हाथों के द्वारा जो अभिमर्शित हुआ, जिसको भगवान ने पकड़ा और वहीं रह करके पकड़ा ही, तो ऐसा नहीं कि बाहर खड़ा होकर के पकड़े, ऐसे देह पर ही रह करके उस पुरस्थित रह करके उन्होंने अभिमर्शित किया। हित्वा स्तन्य निषाद शेष कलुषम यो कालिनिष्कल्मषः, और दूध पीने के बहाने, स्तन पीने के बहाने श्री कृष्ण ने उसके सारे पाप ताप को खींच लिया, खत्म कर दिया, उसे दूर कर दिया। तो तब देहास्य सुगंधि धूम जनने तत्संग काष्ठस्य वा काशंका किमुचित मत्र किमुवा तच्छुवतां विस्मयः। तो साक्षात भगवान के द्वारा डायरेक्ट उसी देह पर रह करके चरण लगा कर हाथ से अभिमर्शित हुआ पुतले का देह, और दूध पीने के बहाने उसका सारा कलमस दूर कर दिया गया, तो उस देह में सुगंध निकला। तब देहस सुगंध धूम जनने, उसके देह से सुगंधित धुआं निकला इस विषय में, और उस देह से संबंधित काष्ठ में यदि सुगंध निकले तो इसमें कौन शंका है और क्या विचित्र बात है, कुछ भी नहीं, स्वाभाविक है। भगवान जिसको अभिमर्शित किए और दूध पिए तो का शंका किंचित, इसमें शंका क्या है? कोई शंका करे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता है? पूर्ण गंध पृथ्व्यम च, पृथ्वी में मूल गंध भगवान है, भगवान प्रवेश किए थे पुतना में और भगवान के शरीर से जो गंध है वो गंध पुतना के शरीर से निकल रही थी, और पुतना के शरीर से नहीं, पुतना के शरीर से सटे हुए चिता के काठ जितने जल रहे थे उसमें भी सुगंध निकल रहे थे। भगवान से संपर्क में आया पुतना का देह और पुतना के देह से सटे हुए काठ में अगुरु की सुगंध निकल रही थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, न कोई विचित्र बात, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो सुनने वालों को इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। किनुआ तत्म बताम विस्मय, सुनने वालों को इसमें विस्मय क्या है? स्वाभाविक है, समस्त सद्गुणों के सुगंध के आधार भगवान श्री कृष्ण है और उन्होंने उसके शरीर को इस तरह अभिमर्शित किया है, पकड़ा था, उसी पर लेटे थे। तो कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौ किमिदम वा कुतो व्यति बदंतो ब्रजम आ जाए, कहते हुए नंद बाबा आदि ब्रज में आए। ते तत्र बैतम गोपह पूतना गमनादिकम, वहां जब आए पूछे ये कैसे धुआं निकल रहा है, क्या जलाया गया है, तो गोपो ने बताया पूतना गमनादिकम, पूतना आगमनादिकम, अरे पूतना एक राक्षसी आई थी और इस प्रकार कैसे सुंदर रूप में आई थी और श्री कृष्ण के बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली और इसके बाद पता नहीं क्यों चिल्लाने लगी इतना जोर से, उनको पता नहीं था कि बच्चा दबाया, ये बच्चे को क्या शक्ति है क्या दबाएगा इतना कोमल बच्चा ये दबाया होगा, ये तो मानते ही नहीं थे, क्योंकि अकस्मात इसने बहुत भयावह शब्द किया और कुछ देर के बाद मर गए। बच्चे को ले गई थी, बच्चा उसके वक्षस्थल पर सुरक्षित मिला। सुत्वा तम निधनम स्वस्ति शिशुश्चासन सुविस्मित, यही वर्णन किए कि वो मर गए, मर गए तो हम लोगों ने काट कूट करके छोटा छोटा किया और जलाया। नंद बाबा पूछो कि अरे बच्चा ठीक है ना? हाँ शिशो स्वस्ति, शिशु बिल्कुल स्वस्ति है, कल्याण में है, उसको कुछ नहीं हुआ, भगवान नारायण की कृपा है, भगवान की कृपा से बच्चा बिल्कुल बच गया। ये सुनकर के नंद आदि गोप बहुत विस्मित हुए, हमने भगवान की पूजा की है, नारायण की आराधना की है, उनकी कृपा से बच्चा बच गया। तो इसके बाद नंद स्वपुत्र मादाय प्रत्यागत निदार्ध, नंद बाबा ऐसा मान रहे थे कि मेरा पुत्र मृत्यु के मुख से लौट आया है, मर कर प्रेत्य आगतम, मर करके लौटा है, बड़े आनंद में थे। और मूर्धन उपाघ्राय परमा मुदम लेभ कुरुद्वह, हे कुलवंशी शिरोमणि कुरुकुल का नाम बढ़ाने वाले परीक्षित, नंद बाबा अपने पुत्र का मस्तक बार बार सूंघ रहे थे और परम सुख पाए, परम आनंद में हुए। परमा मुदम आप कुरुद्वह हे कुरुकुल श्रेष्ठ, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यह संबोधन क्यों कर रहे हैं? इस पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे तुमको ब्रह्मास्त्र से मारा गया था लेकिन फिर भी भगवान ने तुमको जिला दिया, तुमको पा करके युधिष्ठिर आदि जैसे बहुत सुखी थे, आनंद में थे, उसी तरह नंद बाबा को बहुत आनंद हो, तो ऐसा मानते थे कि मर करके बच्चा जी गया, अर्थात भगवान की कृपा नहीं हुई होती तो मर ही चुका था, राक्षसी के हाथ में जब गया इस तरह से तो मानने लगे कि मृत्यु के मुख से लौट आया। और शीर सिंह करके परम आनंद में हो गए। इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक में कहते हैं, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। श्री सनातन गोस्वामी जी इस श्लोक के उपक्रम में कहते हैं उतना भगवान का धाम प्राप्त की और जन्मी गति प्राप्त की, यही केवल नहीं, इस प्रसंग को जो सुनेगा वह भी भगवान का धाम प्राप्त करेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। इस प्रसंग की उत्पत्ति नहीं, यह तत् पुतला मोक्षम। पुतला मोक्षम, पुतला को भगवान ने संसार बंधन से मुक्त करके गोलोक में भेजा, अपने धाम में जन्मी गति दिया, इसको पुतला मोक्ष कहे। यह तत् पुतला मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम। अर्भकम कृष्ण का एक बाल चरित्र है, अर्भक बाल चरित्र है। बाल लीला में उन्होंने पुतना का इस तरह से उद्धार किया, उसको जन्मी गति दिया। इसको कोई भी, जो कोई भी, कोई अधिकारी भेद भी नहीं है, जो कोई मनुष्य सुनता है श्रद्धा से, विश्वास करके सुनता है, तो गोविंद लभते रतिम, तो भगवान श्री कृष्ण में उसे प्रेम प्राप्त हो जाता। एक कथा को सुनने से रति प्राप्त हो जाता। ये प्रसंग इतना महिमामय है। कैसे प्रेम हो जाता है? क्योंकि इस प्रसंग में भगवान ने कारुण्य की महिमा दिखाई। कितनी करुणा है उनमें, उनकी करुणा की आलोचना करके, विचार करके व्यक्ति भक्त हो जाता है, भगवान में प्रेम हो ही जाता है। केवल इस करुणा पर विचार किया जाए बार बार सुन करके, तो करुणा वैभव को, करुणा की महिमा को जान करके भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता। केवल पुतना को ही मोक्ष नहीं हुआ, इस कथा को सुनने वाले किसी भी मनुष्य का, मर्त्य, मृत्यु के पंजे में फंसा हुआ व्यक्ति मर्त्य कहा जाता है, मनुष्य। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस मर्त शरीर से होगा इस जीवन में कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया जाए, जिसमें एक लीला पुतना उद्धार की। गोविंद लभते रत्न, गोविंद में प्रेम प्राप्त करते। तो गोविंद, गोविंद नाम तो उनका बाद में हुआ, अभी तो कोई नाम नहीं है, किसमें रति प्राप्त करेगा? तो बचपन से लेकर के किशोर अवस्था पर्यंत जब तक वे ब्रज में हैं और भगवान इंद्र ने उनको गोविंद नाम दिया, तो उस कृष्ण में अर्थात सर्व लीला में श्री कृष्ण में प्रेम होगा इस कथा को सुनने पर। और अकार प्रश्लेष किया जाए, श्रद्धया के बाद मर्त्य शब्द है, तो अकार जोड़ करके, अकार रह करके श्रद्धया अमर्त्य श्री कृष्ण अतुल गोस्वामी कहते हैं। कोई व्यक्ति जो उसको सुनेगा वह इस संसार बंधन से अतीत हो जाएगा, अमर्त हो जाएगा, अमर होगा, भगवान का धाम प्राप्त करेगा और उसके पहले भगवान में प्रेम प्राप्त करेगा इस प्रसंग को सुनने पर। इतनी महिमा है इस प्रसंग की, इसके कथा श्रवण की जब यह महिमा है, तो भगवान की इस लीला की कितनी महिमा अपने आप में है, श्रवण का ये फल है। तो इस तरह से भगवान ने पुतना का उद्धार किया, जिसको सुनने से भगवान में प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।